हाँ, तो संयोग रूपी सन्निकर्ष की बात हो रही थी कि संयोग रूपी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कब होता है, जब आंख के द्वारा घट विषयक ज्ञान होता है। तो उस समय में चक्षु इंद्रिय है, घट जो है अर्थ है, और दोनों का संबंध जो है वह संयोग है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है युत सिद्ध है, माने पृथक पृथक सिद्ध है। घट पृथक रूप में रहने पर भी सिद्ध रहता है और चक्षु जो है पृथक रहने पर भी सिद्ध रहता है, इसलिए संयोग संबंध है। अयुत सिद्धि अभाव, अयुत सिद्धि के अभाव होने के कारण, क्योंकि अयुत सिद्धि अगर रहेगी तभी समवाय संबंध होगा, क्योंकि यहाँ पर युत सिद्धि है इसलिए संयोग संबंध है। एवं मनसा अंतरेण इंद्रियेण यदा आत्म विषयकम ज्ञानम जन्यते। अब जो है ना एक दूसरा भी उदाहरण बता रहे हैं संयोग सन्निकर्ष का, ताकि ये आत्मा का जो प्रत्यक्ष होता है, माने आत्मा का जो ज्ञान होता है उसको कहेंगे आत्म विषयकम ज्ञानम, माने आत्मा है विषय जिस ज्ञान में, उसे जिसे कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार होना है, वही है आत्मा का साक्षात्कार होना, क्या है आत्म विषयक ज्ञान ही है। ठीक है, तो आत्म विषयक ज्ञान कैसे होता है, तो उसको बताते हैं कि मनसा अंतरेण इंद्रियेण। मैंने कहा था ना कि इंद्रियां 11 हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हैं, और एक और मन रूपी इंद्रिय भी होता है जिसको अंतरिंद्रिय कहा जाता है। अंतरिंद्रिय माने अंदर में रहने वाला इंद्रिय, और अंतरिंद्रिय से जो है ना अंदर की ही वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो मनसा अंतरेण इंद्रियेण, मनस रूपी, मन रूपी जो अंतरिंद्रिय है, उस अंतरिंद्रिय के द्वारा यदा आत्म विषयकम ज्ञानम जन्यते, जब आत्म विषयक ज्ञान होता है माने आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो आत्मा का साक्षात्कार होता है तो उस ज्ञान का स्वरूप कैसा होगा, ताकि अहम, ये अहम का जो ज्ञान है ना, जैसे कहते हैं अहम करोमि, अहम पठामि, अहम भुंजे, तो ये जो अहम है ये अहम क्या है, तो वह आत्म विषयक ज्ञान है। अहम का ज्ञान होना जो है वही है आत्म विषयक ज्ञान। अहम का अर्थ है आत्मा, और अहम का ज्ञान हो गया आत्म विषयक ज्ञान। तो ये जो अहम का ज्ञान है, यह ज्ञान कैसे होता है, किस इंद्रिय से होता है, तो मन रूपी जो अंतर इंद्रिय है उस इंद्रिय से ही, जो मन रूपी इंद्रिय से ही अहम का ज्ञान होता है, आत्म विषयक ज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। तो इस तरह के साक्षात्कार में मन इंद्रिय है, और अर्थ कौन है, तो आत्मा जो है अर्थ है, और इन दोनों का सन्निकर्ष जो है वह संयोग सन्निकर्ष है, माने मन रूपी इंद्रिय और आत्मा रूपी अर्थ, इन दोनों में जब संयोग होता है तब अहम का ज्ञान होता है, अथवा आत्म विषयक ज्ञान होता है, अथवा आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो इस तरह से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का जो पहला भेद था संयोग नाम का सन्निकर्ष, वह संयोग सन्निकर्ष के इन्होंने दो उदाहरण प्रस्तुत किए, एक तो घट ज्ञान और एक आत्म ज्ञान। तो घट विषयक ज्ञान में इंद्रिय जो है चक्षु है, अर्थ जो है घट है, और सन्निकर्ष माने संबंध कौन है, संयोग संबंध है। इसी तरह से आत्म विषयक ज्ञान जो है, इसको हम आत्म साक्षात्कार कह लें, या आत्मा का प्रत्यक्ष कह लें, या अहम का ज्ञान कह लें, इस ज्ञान में इंद्रिय है अंतरिंद्रिय, कौन, मन, और अर्थ कौन है, आत्मा, और दोनों का सन्निकर्ष कौन है, संयोग। इस तरह से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो संयोग नाम का सन्निकर्ष है उसका यहाँ पर विवरण प्रस्तुत किया गया। अब दूसरा जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, माने इंद्रिय और अर्थ का संबंध है, वह कौन सा संबंध है, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त समवाय संबंध जो है वह दूसरा प्रकार है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का। इसका देते हैं विवरण में, यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकम गृह्यते। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, शास्त्र की पंक्ति में जहाँ ग्रह धातु का प्रयोग होना, उस ग्रह धातु का अर्थ जो है वो ग्रहण करना नहीं होता है बल्कि ज्ञान होता है। तो यहाँ है ना घटगत रूपादिकम गृह्यते, गृह्यते का अर्थ क्या करेंगे, धार्यते नहीं करेंगे, गृह्यते का अर्थ करेंगे ज्ञायते, माने ज्ञान होता है। तो यदा माने जब चक्षुरादिना, चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा घटगत रूप आदि का ज्ञान होता है, घट घट रूप समझ रहे हैं ना, कि घट में स्थित जो रूप, घट में रहने वाला जो रूप है उसी को कहेंगे घट घट रूप। तो चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा जब घट घट रूप आदि का ज्ञान होता है उस समय वह ज्ञान कैसा होगा, तो जैसे घटे श्यामम रूपम अस्ति, घट में श्याम रूप है, काले कलर का जो घट है उसमें ये ज्ञान होगा कि घटे श्यामम रूपम अस्ति, घट में श्याम रूप है। ये कब पता चलेगा, जब हम आंख से उस घरे को देखेंगे, काले घरे को, तो हमें ये ज्ञान होगा कि घटे श्यामम रूपम अस्ति। तो इस तरह का जो ज्ञान है इसी को कहते हैं यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकम गृह्यते, जब चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा घटगत रूप आदि का जब ज्ञान होता है, कैसा ज्ञान होता है वह, कि घटे श्यामम रूपम अस्ति, इस तरह का जब ज्ञान होता है, इस ज्ञान में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वह होता है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, उसी को बता रहे हैं। तदा माने उस समय में, उस ज्ञान में चक्षु इंद्रियम, चक्षु इंद्रिय होता है, और घट का जो रूप है श्याम रूप जो है वह वहाँ पर अर्थ होता है, तो इंद्रिय हो गया, अर्थ हो गया, और अनयोः सन्निकर्ष है, इन दोनों का सन्निकर्ष माने संबंध क्या होगा, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा, संयुक्त समवाय नाम का संबंध होगा, किन दोनों में, इंद्रिय में और अर्थ के में जो परस्पर संबंध होगा, जो इंद्रिय और अर्थ में नहीं, इंद्रिय और ये जो घट में रहने वाला जो रूप है वही यहाँ पर अर्थ है ना, ठीक। तो चक्षु रूपी इंद्रिय और घट में रहने वाला जो रूप है वह जो अर्थ है, इन दोनों के बीच में संयुक्त समवाय का संबंध होता है। अब इसको और बताते हैं क्लियर, ये संयुक्त समवाय संबंध कैसे होता है, तो कहा कि चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। आप याद करिए, मैंने संयुक्त समवाय का मतलब बताया था कि इंद्रिय से संयुक्त में जिसका समवाय संबंध होता है उसमें संयुक्त समवाय संबंध होता है। फिर से सुन लीजिए, इंद्रिय से संयुक्त में जिसका समवाय संबंध हो उसमें संयुक्त समवाय संबंध होता है। यहाँ पर उदाहरण में देखिए, चक्षु इंद्रिय है, उससे संयुक्त कौन है, घट है, और उस घट में समवाय संबंध किसका है, रूप का समवाय संबंध है, क्योंकि आप जानते हैं गुण गुणिनो समवाय संबंध, माने रूप जो है वह गुण है, और वह जो गुणी में घट में रहेगा वो किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा। तो इस तरह से चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात संयुक्त समवाय सन्निकर्षः, माने चक्षु रूपी इंद्रिय से संयुक्त घट है और उस घट में रूप जो है वह समवाय संबंध से रहता है, इसलिए चक्षु इंद्रिय में और उस रूप में कैसा संबंध होगा, तो संयुक्त समवाय नाम का संबंध होगा। एवं इसी तरह से मन, पहले भी जो है ना संयोग नाम के सन्निकर्ष में दो उदाहरण दिए थे, एक तो दिया था घट विषयक ज्ञान, दूसरा दिया था आत्म विषयक ज्ञान, तो यहाँ भी दो उदाहरण देते हैं, एक ज्ञान दिया, एक उदाहरण दिया कि घट रूप का ज्ञान, और दूसरा उदाहरण देते हैं एवं मनसा आत्म समवेते सुखादो गृहमाने अयमेव सन्निकर्षः। आप जो है ना न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, तो न्याय दर्शन में क्या है, ये सिद्धांत है कि ज्ञान का अधिकरण जो है वह आत्मा है, अधिकरण माने आश्रय, माने जिसमें वह रहता है। जैसे मान लीजिए किसी बर्तन में आप दूध रखते हैं, तो दूध का अधिकरण कौन है, आश्रय कौन है, तो वह पात्र है जिस पात्र में आप दूध रखते हैं। तो जैसे किसी बर्तन में दूध रखा जाता है, उसी तरह से आत्मा रूपी बर्तन में ज्ञान रूपी दूध जो है रखा जाता है। इस तरह से ज्ञानाधिकरणम आत्मा कहा जाता है, माने आत्मा किसे कहते हैं, तो ज्ञान का अधिकरण जो है वह आत्मा कहलाता है, माने जहाँ जिस पर ज्ञान स्थित हो, जिसमें ज्ञान रहता हो, उसे हम आत्मा कहते हैं। अच्छा, अब न्याय दर्शन के अनुसार जो है ना, ये सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ये सब जो गुण है ना, इन सबों को गुण माना गया है, और ये सब जो गुण है वो कहाँ रहते हैं, तो आत्मा में ही रहते हैं। सुख कहाँ होता है, आत्मा में, दुख कहाँ होता है, आत्मा में, ज्ञान कहाँ होता है, आत्मा में, इच्छा कहाँ होती है, आत्मा में, द्वेष कहाँ होता है, आत्मा में, प्रयत्न कहाँ होता है, आत्मा में, तो इस सब का अधिकरण जो है वह आत्मा ही है। तो इसमें अब इन समों का जो प्रत्यक्ष होता है, अब सुख का जो प्रत्यक्ष होगा ना, तो कैसा ज्ञान होगा, अहम सुखी, मैं सुखी हूँ, इस तरह का जो ज्ञान है यह हो गया सुख का प्रत्यक्ष। अहम दुखी, मैं दुखी हूँ, इस तरह का जो ज्ञान है ये हो गया दुख का प्रत्यक्ष। अहम इच्छावान, मैं जो हूँ इच्छावान हूँ, इच्छुक हूँ, यह जो ज्ञान है यह इच्छा का प्रत्यक्ष हुआ। अहम द्वेषी, मैं द्वेषी हूँ, इस तरह का जो ज्ञान होता है यह द्वेष का ज्ञान हुआ। अहम प्रयत्नवान, तो इस तरह से ये सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न इन गुणों का जो ज्ञान होता है वह उस ज्ञान के समय में अयम एव सन्निकर्ष, यही सन्निकर्ष होता है, माने संयुक्त समवाय नाम का सन्निकर्ष होता है। कैसे, तो जैसे पहले आपको दिखाया ना कि चक्षु से संयुक्त है घट और उस घट में रूप समवाय संबंध से रहता है, इसलिए वहाँ संयुक्त समवाय संबंध माना जाता है इंद्रिय में और रूप में। ऐसे ही यहाँ पर मन रूपी जो अंतरिंद्रिय है उससे संयुक्त कौन होगी, आत्मा, और उस आत्मा में समवाय संबंध से कौन रहता है, सुख दुख इच्छा द्वेष यत्न ये रहता है। तो उस सुखादि का जब सुखादो गृह्य माने, मैंने बताया था ना कि शास्त्र में अगर ग्रह धातु का प्रयोग हो तो उसका अर्थ धारण नहीं करना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए। तो यहाँ भी गृह्य माने है ना, इसका अर्थ करेंगे ज्ञाय माने, तो सुखादो ज्ञाय माने, तो मनस रूपी इंद्रिय से संयुक्त कौन है, आत्मा। उस आत्मा में समवेत है माने समवाय संबंध से स्थित है कौन, सुखादि माने सुख दुख इच्छा आदि। उन सुखादियों का, वह सुखादि जब गृह्यमान होता है माने ज्ञायमान होता है, उन सुखादियों का जब ज्ञान होता है उस समय में अयम एव सन्निकर्ष, यही जो है संयुक्त समवाय नाम का सन्निकर्ष होता है। माने मन रूपी इंद्रिय और सुख आदि रूपी जो अर्थ है इन दोनों के बीच में संयुक्त समवाय नाम का सन्निकर्ष है। जैसे चक्षुर इंद्रिय और घट में रहने वाला रूप, इन दोनों के बीच में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है, ऐसे ही मन रूपी इंद्रिय और सुख रूपी जो है आत्मा में रहने वाला जो सुख दुख आदि है उसका के बीच में संयुक्त समवाय नाम का सन्निकर्ष होता है। इस तरह से द्वितीय सन्निकर्ष के बारे में बताया। तो अब तीसरा जो है उसको बताते हैं, घटगत परिमाणादि ग्रहे चतुष्टय सन्निकर्षोपि अधिकम कारणम इष्यते सत्यपि संयुक्त समवाये तदभावे दूरे परिमाणाद्य ग्रहणात्। अब यहाँ जो है ना, मैंने कहा था अभी कि तीसरा सन्निकर्ष बताएगा, वो अभी नहीं बताकर कुछ और बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा आपने कह दिया कि ये संयोग सन्निकर्ष की आपने चर्चा की, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष की चर्चा की, और आपने ये कहा कि संयोग नाम के सन्निकर्ष से क्या होता है, घट विषयक ज्ञान होता है, आत्म विषयक ज्ञान होता है। फिर आपने कहा कि संयुक्त समवाय नाम के सन्निकर्ष से घट में रहने वाले रूप का ज्ञान होता है, आत्मा में रहने वाले सुख दुख आदि का ज्ञान होता है, ये आपने बताया। तो इसका मतलब यह है कि ये है कि जहाँ जहाँ ये सन्निकर्ष होगा वहाँ वहाँ जो है ना इस तरह का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई चीज़ बहुत दूर में होती है वहाँ पर संयोग सन्निकर्ष तो हो जाता है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष तो रहता है, लेकिन वहाँ पर जो है विशेष ज्ञान नहीं हो पाता है। अब वही बता रहे हैं कि घटगत परिमाण आदि ग्रहे, घट में रहने वाला जो परिमाण आदि है, परिमाण समझते हैं ना मात्रा, माने ये घट चार हैं कि पांच हैं कि दस हैं, कहीं पर जो है ना घट रखे हुए हैं, तो वहाँ पर जब हम चक्षुरिंद्रिय से घरे को देखेंगे तो ये तो हमें पता चल जाएगा कि ये घट है, ये भी पता चल जाएगा कि ये काला घट है कि लाल घट है कि हरा घट है कि पीला घट है, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ी चूंकि दूरी पर वो है हम गिन नहीं सकते, तो उस समय में घट में रहने वाला जो परिमाण है, घट की जो मात्रा है, उसका पता नहीं चलता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये जो सन्निकर्ष है, संयोग सन्निकर्ष या संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ये सन्निकर्ष तभी काम करता है ज्ञान में जबकि पास में हो। अगर दूर में कोई वस्तु रहेगी उस समय में इन सन्निकर्षों के अलावा भी जो है कुछ कारण होता है, जिस कारण के कारण जो है ना उस तरह का ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल यही दोनों सन्निकर्ष जो है यह पर्याप्त नहीं है, इसके अलावे भी जो है ना वहाँ पर कारण होता है, जब दूरस्थ वस्तु की परिमाण आदि का पता करना हो उस समय में। अब फिर पंक्ति देखिए, घटगत परिमाण आदि ग्रहे, घट में रहने वाला जो परिमाण आदि है, परिमाण आदि से संख्या ले लीजिए, परिमाण मतलब मात्रा ले लीजिए, भारीपन ले लीजिए। तो अब जैसे कोई मान लिया धान की ढेर रखी हुई है, चावल की ढेर है, अब ये एक क्विंटल है कि दो क्विंटल है कि चार क्विंटल है, इसका ज्ञान थोड़े होगा संयोग सन्निकर्ष से अथवा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से। उसमें तो और भी कारण होंगे ना, जैसे उसको तुला पर तौलना पड़ेगा, जितना तुला से तुलेगा उतना जो है ना फिर परिमाण का ज्ञान होगा, तो वहाँ पर तुला पर तौलना भी एक कारण है। इस तरह से कहा कि घटगत परिमाण आदि ग्रहे, घट में रहने वाला जो परिमाण आदि है उसके ग्रह में, फिर ग्रह धातु आ गई ना, इसका अर्थ ज्ञान करना है। तो घटगत परिमाण आदि के ज्ञान में चतुष्टय सन्निकर्षः अपि अधिकम कारणम स्थिते, माने इन कारणों के अलावा ये जो सन्निकर्ष रूपी जो कारण है उसके अलावा भी जो है ना कारणम स्थिते, कारण जो है यहाँ पर वांछित है, कारण जो है ना स्वीकार्य है। चतुष्टय सन्निकर्षः अपि अधिकम, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चतुष्टय सन्निकर्ष क्यों कहा, सन्निकर्ष जो है वो तो छह बताए गए हैं ना, तो यहाँ पर कहते हैं कि चतुष्टय सन्निकर्ष अर्थात तीन सन्निकर्ष के अलावे चौथा सन्निकर्ष भी जो है यहाँ पर अधिक कारण के रूप में मान्य होगा। ठीक है, तो अधिकम कारण स्थिति सत्यपि संयुक्त समवाये तदभावे दूरे परिमाणादि अग्रहणात्, कहा कि संयुक्त समवाय नाम का सन्निकर्ष रहता भी है तो भी तदभावे, माने चतुष्टय जो सन्निकर्ष है, चौथा जो सन्निकर्ष है, उसके अभाव में दूरे, दूर में रहने वाली चीज में परिमाण आदि अग्रहणात्, परिमाण आदि का ग्रहण नहीं हो पाता है। तो यह जो चतुष्टय सन्निकर्ष भी एक ना सन्निकर्ष होता है जो कि पीछे नहीं गिनाया गया था। ये जो चतुष्टय सन्निकर्ष है इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब कोई चीज दूर में हो, ठीक है, और उसमें परिमाण आदि का ज्ञान करना हो, उस समय में चतुष्टय सन्निकर्ष की जरूरत पड़ती है। फिर से एक बार देख लें पंक्ति को, घटगत परिमाण आदि के ग्रह में माने ज्ञान में चतुष्टय सन्निकर्ष जो है, माने चौथा जो एक कोई सन्निकर्ष है, वह अधिकम कारण, अधिक कारण जो है माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो सत्यपि संयुक्त समवाय माने संयुक्त समवाय नाम के सन्निकर्ष होने पर भी तद अभावे, तत् से पकड़ना है चतुष्टय सन्निकर्ष को, चतुष्टय सन्निकर्ष के अभाव में दूरे माने दूर से जो है ना परिमाण आदि का ग्रहण नहीं होता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये चतुष्टय सन्निकर्ष कैसा होता है, चौथा सन्निकर्ष माने संबंध, ये चौथा संबंध कैसा होता है, तो आगे बता रहे हैं कि चतुष्टय सन्निकर्षो यथा, चतुष्टय सन्निकर्ष क्या है, तो इंद्रियावयवैः अर्थावयविनाम, इंद्रिय अवयव का अर्थ अवयवी के साथ, फिर दूसरा है इंद्रिय अवयवी का अर्थ अवयव के साथ, तीसरा है इंद्रिय अवयव का अर्थ अवयव के साथ, और चौथा है अर्थ अवयवी के साथ इंद्रिय अवयवी का सन्निकर्ष। तो यही जो सन्निकर्ष है इसी को चतुष्टय सन्निकर्ष कहा जाता है, क्योंकि ये चार सन्निकर्ष हो गए ना, आज का पाठ यहीं रखते हैं।